जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सप्लाई ओके ठीक है ठीक जय जय प्रभुपाद 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 ब्लू सी वृंदावन धाम की श्री वराह द्वादशी की हरे कृष्णा। तो हम ये वरह जो है मैंने ये पढ़ेंगे द्वादश स्तोत्र पढ़ेंगे तो अभी ये भजन के रूप में गाएंगे। तो प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि वरह भगवान के आविर्भाव के दिन हमें ये भजन गाना चाहिए। तो अभी आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख के मेरे पीछे गा सकते हैं प्रलय प्रलोई जले धृतवान शिवेदम विहित विहित्र चरिदमखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे प्रलय सभी सब लोग बोलो एक साथ आवाज ही नहीं आ रही है। हरे जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणि धरण किन चक्र गरिष्ठे, केशवधीता कुर्म शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणि धरण किन चक्र गरिष्ठे, केशवधीत सभी वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशनी कलंक कलेव निमग्ना, केशवधीता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशनी कलंक कलेव निमग्ना, केशवधीता शुकर रूपा, जोर से हरि बोल, तव कर कमल वरे नखमद्भुत शृङ्गं, दलित हिरण्यकशिपो तानो भृङ्गं, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, कव कर कमल वरे नखम छलयसि विक्रमणें बलिमद्भुत वामन, पदनख नीरजनित जन पावन, केशवधृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, शिविक्रमणे वामन केशवधीता वामन रूपा, प्रिय रुधिरमये जगदापगापम्, स्नपयसि पयसि शमित भवतापम्, केशवद्वीता भृगुपति रूपा जय जगदीशा हरे जय जगदीशा हरे जय जगदीशा हरे क्षत्रिय रुधिरमाय जगद पपापां सपयसि पयसि शमित भवतापम् केशवद्वीता भृगुपति रूपा जय जगदीशा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण वितरसि दिक्ष्णुरणिं दिक्पतिं कमनीया दशमुखमौलिं बलिं रमणीया केशवद्वीता रामशरीरा जय जगदीशा हरे जय जगदीशा हरे जय जगदीश हरे वितरसि दिक्षुरणिं दिक्पतिं कमनीयां दशमुखमौलिं बलिं रमणीयां दीता रामशरीरा वह शिव पुषि विशदे वसनं जलधाभं हलहति भीति मिलित यमुनाभं केशवद्वीता हलधर रूपा जय जगदीशा हरे जय जगदीशा हरे जय जगदीश हरे वह शिव पुषि विशदे वसनं जलधाभं हलहति भीति मिलित यमुनाभं निन्दसि यज्ञविधेरः श्रुतिजातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवद्वीता बुद्धशरीरा जय जगदीशा हरे जय जगदीशा हरे जय जगदीश हरे निन्दसि यज्ञविधेरः श्रुतिजातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम् प्लेच्छ निहविधने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् केशवद्वीता कल्किशरीरा जय जगदीशा हरे जय जगदीशा हरे
जय जगदीश हरे प्लेच निवाधने कलयसि करवालम धूमकेतुमिव कमपि कराला श्री जय देव कवे मृदम धाराम शृणु सुखदम शुभदम भवसारा केशवद्रेता दशविध रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जय देव कवेरि मुमुदितम उदारम शृण सुखदम शुभदम भवसारम निधाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय श्री वराह भगवान महाद्वादशी की पिताय गौर प्रेमानंदी सामवेद भक्तुंद की सामवेद भक्तुंद की सामवेद भक्तुंद की जय श्री श्री गुरु और गौरांग की ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार कल वराह भगवान का ये था आविर्भाव, तो कल उपवास किया जाता है। आज के दिन इसको कहते हैं वराह द्वादशी। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रसाद पा लिया होगा। तो अभी संक्षिप्त में हम वराह भगवान के प्राकट्य के बारे में बताएंगे। तो श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि तीसरे स्कंद के अंतर्गत जो है वराह भगवान का प्राकट्य का उल्लेख आया है। तो समय की कमी है तो हम श्लोक को ज्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे, तो सीधा हम चालू करते हैं। इत्यभिध्यत नास विवरात्म सहसानग वराहो तोक्तो निरगाध अंगुष्ट परिमाणक। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तो उनके नथुने से सहसा एक सुवर वराह का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से के अधिक नहीं थी। तो इसका तात्पर्य नहीं है, तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है, हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा ने देवताओं देखा सॉरी देखते ही देखते वह वराह विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। आकाश में अद्भुत सुकर जैसे रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने लगे। क्या सुकर के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। ये ब्रह्मा जी कह रहे। फिर आगे, प्रारंभ में यह सुकर अंगूठे के सिरे से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में ही वह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है? तात्पर्य, चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष है और इसके पूर्व उन्होंने ऐसा रूप नहीं देखा था, अतः वे अनुमान नहीं लगा पाए कि शुक्र का प्राकट्य विष्णु का अवतार था। भगवान के अवतार के असामान्य लक्षण ब्रह्मा तक के मन को मोहित कर सकते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि वराह भगवान का जो है चर्चा भागवतम में सर्वप्रथम वो आया है, भागवतम के दूसरे स्कंद सातवां अध्याय पहला श्लोक, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बता रहे। भगवान की जो अवतार की जो श्रेणियां हैं, तो भगवान के उन्होंने सारे लीला अवतार के बारे में इस अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग भगवान के 30-32 अवतारों का उल्लेख ब्रह्मा जी नारद जी को करते हैं। तो सर्वप्रथम जो श्लोक आता है, ब्रह्मा जी ने कहा जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तो आप देखते हैं कि यहां संक्षिप्त में बताया, यहां ब्रह्मा जी केवल जो है आउटलाइन दे रहे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि भागवतम में जो है दो प्रकार के वरह भगवान के जो उल्लेख आते हैं, एक आता है श्वेत वरह कल्प, एक जो है एक बार वरह भगवान ने इसी प्रकार ब्रह्मा जी के नाक से जन्म लिया था, लेकिन उनका जो शारीरिक जो रंग था वो था सफेद। कभी आप मथुरा में जाएंगे, मथुरा में वहाँ विश्राम घाट है, तो वहाँ किसी को आप पूछ लेना, वहाँ जो है द्वारकाधीश का मंदिर है, उसके दाहिने गली से अगर आप ऊपर जाएंगे 100 मीटर दूरी पर ये दोनों मंदिर एक ही साथ स्थित है, श्वेत वरह और रक्त वरह। तो ये श्वेत वरह कल्प में उस वक्त जो है कोई हिरण्याक्ष वगैरह कोई नहीं था, लेकिन पृथ्वी अपने कक्ष से जो है वो पाताल में गिर गई थी, तो वराह भगवान ने उसको ऊपर कर दिया था, ठीक है। फिर रक्त वरह, इनको यानी भगवान का सोने का अवतार भी कहा जाता है। तो ऐसे भागवतम में जो है 5 जगह हमारे आचार्यों ने ये किया है अलग अलग जगह टीका में कि भगवान ने वराह का अवतार जो है अब तक 5 बार लिया है ब्रह्मा जी के इस दिन में। तो अभी आप लोगों से एक प्रश्न है कि कोई बता सकता है कि भगवान ने ये जो है सुअर का ही रूप क्यों लिया? तो आप लोगों से एक थोड़ा आप लोगों का ब्रेन स्टॉर्मिंग। हाँ अच्छा, उसके पास स्पेशल ये है क्या बोलते हैं जो भी है, हाँ जो सुअर है वो कोई भी गंदगी में जो अच्छी चीज है उसको ढूंढने में सक्षम है, समझ में आ रहा है ना। जैसे गीदड़ है वो ऊपर से 5 किलोमीटर ऊपर से नीचे मरा हुआ कुछ देख सकता है, और उसी प्रकार जो कुत्ता भी होता है वो भी नाक से ये जो है कुछ चीज ढूंढने में सक्षम होता है। तो ऐसे बताते हैं कि हमारे आचार्य कि पाताल जो है वो गंदगी है, वो पाताल जो नीचे के लोग है वो गंदे है, तो इसलिए वहां भगवान ने ये रूप धारण किया था। और शुकर का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि भगवान अपने दांत में उस पृथ्वी को पकड़ सके, समझ में आ रहा है। तो प्रहलाद महाराज भी भागवतम में कहते हैं कि भगवान आप 84 लाख योनि, ऐसे नहीं कि यहाँ 10 अवतार, ये सुखदेव गोस्वामी ने केवल 10 ही बताए हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भगवान 84 लाख, जैसे आप लोगों को कभी कभी मच्छर भी काट लेता है तो भगवान उसमें भी प्रकट होते हैं जो भी है, तो ये हमारे प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो हमारे वृंदावन के अंतर्गत हम देखते हैं कि ब्रजमंडल में जैसे आपको मैंने बताया श्वेत वरह और रक्त वरह ये दोनों मथुरा में है, तो आदि वरह पुराण में जो है भूमि देवी को वरह भगवान क्या बताते हैं कि ये तीनों जगत में मुझे मथुरा बहुत प्रिय है और मैं वहां नित्य वास करता हूं। तो मथुरा में जो विश्राम घाट है वहां की लीला आती है कि जब ही भगवान ने पृथ्वी को अपने कक्ष में स्थित किया था तो वराह भगवान ने भी वहां विश्राम किया था। बाद में हम देखते हैं कि कंस का वध करने के बाद कृष्ण और बलराम जी ने भी वहां आराम किया था। तो और एक पुराण में कथा आती है कि जो मथुरा में जो रक्त वरा है उसकी जो कथा बताई जाती है कि एक बार ऐसे बताया जाता है कि ये आदिवरह जो मंदिर है उसकी जो कथा आती है आदिवरह पुराण में कि एक बार कपिल देव जो है उन्होंने एक मन में भगवान का एक रूप का एक एक किया, भगवान के वरह रूप का उन्होंने एक किया, मन में एक एक ध्यान किया तो भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। तो फिर क्या हो गया कि ये अद्भुत रूप देखने के लिए सारे देवता आ गए। सारे देवता आए तो उसमें से इंद्र ने कहा हम इसकी पूजा करेंगे, हमें दे दो। तो इस प्रकार इंद्र जो है, ये लंबी कथा है, तो इंद्र उसको जो है वरह भगवान को अपने स्वर्ग में लेके गए। जब भी रावण ने इंद्र को हराया तो रावण उस विग्रह को जो है लंका लेके आ गया। और जब भी लंका का युद्ध हुआ, राम भगवान ने रावण का वध किया और विभीषण को राजाभिषेक में राजा बना दिया। तो विभीषण कह रहे थे हमसे आप कुछ लेके जाओ, तो भगवान ने कहा नहीं, आप मुझे कुछ लंका से कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो ये वरह का विग्रह दे दो। तो इस प्रकार ये जो है ब्रह्मा जी का अभी सातवां मन्वंतर चल रहा है, 24वां कल्प, अभी 28वां ये युग चक्र चल रहा है, ये 24वें युग चक्र की घटना है। तो राम भगवान जो है इस वरह भगवान को वो अयोध्या लेके गए पुष्पक विमान से। और जब ये अयोध्या में यहाँ के ब्राह्मण गए थे, उन्होंने भगवान से कहा कि यहाँ लवणासुर बहुत ही ये कर रहा है, ब्राह्मणों को तकलीफ दे रहा है, तो आप कुछ करो। तो उस वक्त राम भगवान ने उनके छोटे भाई शत्रुघ्न को इस विग्रह को दे के कहा कि आप जाके वहां लवणासुर का वध करो और मथुरापुरी का फिर से स्थापना करो। तो इस प्रकार आप देखते कि शत्रुघ्न जब भी वो मथुरा मंडल आए तो उन्होंने सर्वप्रथम जो है इसका वध कर दिया जो है लवणासुर का। और उसके पश्चात जो है उन्होंने इस विग्रह को मथुरापुरी, उस समय उन्होंने मधु यानी मधुपुरी करके नाम रखा था मथुरा का। तो ये यानी 24वां जो युग चक्र है यानी ये अभी सातवें मन्वंतर का, तो उस समय की घटना है। तो आप देखते हैं कि ब्रज लीला में भी एक ऐसे एक बहुत अच्छी लीला आती है कि एक बार की ऐसी लीला आती है कि एक बार कृष्ण भगवान को यशोदा ने बहुत अच्छी तरह सजाया और बरांडे में बैठा दिया अच्छी तरह सजा के। अभी छोटे बालक थे, अभी आप जानते हैं छोटे बच्चे हैं, इसको कितना उनको कितना भी सजाओ वो अपनी मस्ती करते हैं, ठीक है। तो जैसे यशोदा ने कृष्ण को सजा दिया था, तो सजा के कृष्ण को आंगन में बिठा दिया था, तो यशोदा अंदर कुछ काम वश अंदर चली गई। तो क्या हो गया कि तुरंत कृष्ण भगवान ने जहाँ गाय के बछड़े कीचड़ में गए, पूरा शरीर को गंदा कर लिया। तो यशोदा ने सर पर हाथ मार लिया, बोला रे कि अभी 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 इसको मैंने इतने अच्छी तरह सजाया था। तो यशोदा ने सुक्रोशी का मतलब है कहा कि अरे तुम तो सुकर थे, ऐसे लगता है कि तुम पिछले जन्म में सुकर थे। तो ये जयदेव गोस्वामी के एक जो है उपन्यास में आता है, तो जयदेव गोस्वामी ये कथा को बताते हैं। तो उन्होंने यशोदा ने देखा कि कृष्ण जो है पूरे कीचड़ गाय के गोबर के कीचड़ से लुप्त हो गए हैं, तो उन्होंने ऐसे ही थोड़े गुस्से में जो है कहा कि ऐसे लगता है कि तुम पिछले जन्म में सुकर थे। तो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो नैमिषारण्य में सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, तो उन ऋषि मुनियों ने जो है सुत गोस्वामी से, खास करके शौनक ऋषि, उनके साथ 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। तो उन्होंने भगवान के लीला अवतारों का जिज्ञासा किया था, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो है उन्होंने सुत गोस्वामी ने भगवान के 22 लीला अवतारों का उल्लेख दिया है भागवतम में, और दूसरी जगह और दो जो है लीला अवतारों का उल्लेख आता है। इस प्रकार भगवान के 24 लीला अवतार है भागवतम में जिसका उल्लेख आया है। तो जैसे आपको मैंने बताया कि नारद जो है उन्होंने ब्रह्मा जी को भी ये दूसरे स्कंद के अंत में और सातवें स्कंद के प्रारंभ से भगवान के बहुत सारे लगभग 32 अवतारों के उल्लेख किए हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि जो सूत गोस्वामी जो है नैमिषारण्य के ऋषि मुनि है, उनको उन्होंने भगवान के जो अलग अलग अवतारों के बारे में जो वर्णन किया है, तो उसको हम समझने का संक्षिप्त में प्रयास करेंगे। तो सूत गोस्वामी बताते हैं कि हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने होते हैं। अभी आप लोगों ने पता नहीं, एक बार मुझे याद है 10 साल पहले जब राधा कुंड को खाली किया था, बहुत कीचड़ निकाला था राधा कुंड से। हाँ, उसके बाद में राधा कुंड में पानी कहीं से ला के नहीं डाला, नीचे से झरने का पानी से राधा कुंड वो भर गया था। तो आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे तालाब होते हैं, तो उसमें पानी वर्षा का पानी आता है और नीचे जमीन से भी झरने से पानी भर जाता है। तो यहाँ ये उल्लेख दिया है कि ये जो अक्षय जल का मतलब होता है कि जो जल का कभी, जो तालाब कभी सूखता नहीं है। तो ऐसे जल तालाबों में क्या होता है कि पानी, पहाड़ से जो पानी आता है गर्मियों के दिनों में, वो भी उसमें भर जाता है। तो आज भी भारत में हम देखेंगे बहुत सारे गांवों में पहले लोग क्या करते थे, तालाब बनाते थे। आज भी बहुत जगह भारत में आप ये देख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी भी उल्लेख करते हैं कि भगवान के जो अवतार, वो बताते हैं ब्रह्मा जी एक श्लोक में, एक सुंदर श्लोक आता है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की स्तुति करते हुए कि एक समय आएगा कि एक व्यक्ति इस पृथ्वी के धूल के कण गिन सकता है, पृथ्वी के धूल के कण गिन सकता है, लेकिन आपके लीला और आपके अवतार कोई गिन नहीं सकता। तो जो भी शास्त्रों में दिया है वो एक क्या है, और भी कहते हैं यानी संक्षिप्त में थोड़ा बहुत दिया है। तो ऐसे भी चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि अगर हम बहुत सारे शास्त्र पढ़ने जाएंगे तो हमारा मन जो है वो भ्रमित हो जाएगा। तो इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए जो भी बताया है उसको समझने का प्रयास करो। तो आजकल के जितने भी बड़े बड़े मॉडर्न साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या है, तर्क लगाते हैं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो भिन्नम नाशाश्व मुनिर मतम न भिन्नम महाजनो एन गत स पंत। तो आजकल अंग्रेजी लैंग्वेज में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके वो कहते हैं कि ये भारतीय संस्कृति के जितने भी ग्रंथ है ये एक काल्पनिक है। आप लोग जानते हैं काल्पनिक का मतलब क्या होता है, कल्पना। अंग्रेजी में उसको कहते हैं मिथ, उसको कहते हैं माइथोलॉजी। तो किसी एक मूर्ख ने ऐसे बताया कि ये भगवान के जो 10 अवतार हुए, तो भगवान भी पहले एक जानवर ही थे, धीरे धीरे फिर आधा जानवर आधा मनुष्य बने, फिर एक छोटे बालक बने, उसके बाद में वो मनुष्य बने। अगर आपने अब ये 10 अवतार स्तोत्र देखा होगा तो सर्वप्रथम क्या आया था, सर्वप्रथम कौन सा अवतार आया था, मत्स्य अवतार। उसके बाद में क्या आया, हाँ कुर्म। हाँ, तो ये जो है कुर्म है उसको अंग्रेजी में एम्फीबियन कहते हैं। कोई जानता है एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, जो पानी में भी चल सकता है और जमीन पर भी चल सकता है, कछुआ। हाँ, ऐसे कुछ जानवर होते हैं वो जमीन पर और पानी में दोनों जगह, उनको अंग्रेजी में एम्फीबियन कहते हैं। जो भी है, तो किसने एक बहुत अच्छा तर्क लगाया। फिर तीसरा अवतार कौन सा था भगवान का, चौथा, हाँ आधा पुरुष नीचे आधा ऊपर जो है सिंह का अवतार। तो ऐसे ये हाईग्रीव का भी अवतार है भगवान का, हाईग्रीव, जहां भगवान का जो चेहरा है ऊपर का जो पार्ट है वो घोड़े का है। तो इस दुनिया में तर्क करने वाले बहुत लोग हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति कितना भी विख्यात हो, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो हमारे अंदर 4 प्रकार की त्रुटियां हैं, 4 प्रकार की हम लोग गलतियां करते हैं, हम मोहित हो सकते हैं, हमारे इंद्रिय जो है अपूर्ण है और हम दूसरों को धोखा देते हैं, ठीक है। तो ये 4 हमारे अंदर कमियां हैं। तो आज तक इस दुनिया में यही बताया जाता है कि पहले कोई एक अमीबा था, उससे आदमी बना है। तो आज भी बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि हमारे जो पूर्वज जो थे वो बंदर थे, तो आज भी बंदर क्यों है। हमारे हम लोग मूर्ख लोग पूछते नहीं कि उनको पूछो भाई आज भी बंदर क्यों है। अगर ये बंदर अभी भी बंदर क्यों है, ये क्यों मनुष्य क्यों नहीं बना है कि नहीं। तो यूरोप में एक व्यक्ति थे डार्विन, उसका थ्योरी काफी साल तक चला, अभी भी चल रहा है कुछ देशों में, लेकिन अभी काफी लोग समझ गए ये डार्विन ने दुनिया को मूर्ख बनाया। डार्विन जो है, तो आप कोई भी मंदिर में जाएंगे, खास करके अगर आप जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो पंडा आपको रोकेगा, ए बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है, तो आप थोड़े बताएंगे मेरा डार्विन गोत्र है। डार्विन गोत्र समझ देना, डार्विन गोत्र का मतलब है कि डार्विन का कहना है कि हम बंदरों से मनुष्य बने। लेकिन हमारा गोत्र क्या होता है कि हमारे जो ऋषि मुनि है जिनके इसमें हमारा जन्म हुआ है, तो वो हमारा गोत्र है। तो आप लोग कभी जाएंगे तो आप कहते हैं कि अच्युत गोत्र, तो आपको कोई वो ये नहीं करेगा। तो खास करके दक्षिण भारत में कभी आप पूजा अर्पण करेंगे मंदिरों में, तो पहले पुजारी यही पूछेगा कि आपका गोत्र बताओ। तो प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक अगर बच्चे को अपना पिताजी कौन समझना है, तो उस बच्चे को किससे जिज्ञासा करना होगा, हाँ अपनी माँ से, नर्स से नहीं, डॉक्टर से नहीं, उसकी माँ ही बताएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार यहां आप देखते हैं कि भौतिक जगत में तर्क लगाने वाले बहुत लोग हैं, तो उनके जो है कहने पर हमें नहीं चलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आजकल के जितने भी आधुनिक साइंटिस्ट लोग हैं, ये लोग मूर्ख है, और कहते हैं कि इनसे अच्छा एक मुर्गी है। अब मुर्गी एक अंडा निकाल के उसके ऊपर बैठ के एक जो है एक छोटा सा बच्चा निकालती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप भी कहते हैं कि केमिकल से सब कुछ आता है, तो आप केमिकल इकट्ठा कर दो, एक अंडा बना दो, आप उसके ऊपर बैठो, एक मुर्गी का बच्चा निकाल के दिखाओ, तो आपको हम नोबेल प्राइज देंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कोई कर नहीं सकता। प्रभुपाद जी कहते कि हमारे साइंटिस्ट लोग ये घास का तिनका भी बना नहीं सकते। लेकिन आजकल दुनिया इतनी मूर्ख हो गई है कि लोगों को क्या लगता है, ये साइंटिस्ट लोग ही सब कुछ चला रहे दुनिया को। और ये लोग भी ऐसे भी तर्क देते रहते कि पृथ्वी का भी स्पीड घट रहा है, सूरज की रोशनी कम हो रही है, जैसे कि यही सब कुछ चला रहे है कि नहीं। तो ये मूर्खता है। तो हमारे शास्त्रों में जो भी बताया है उसमें कुछ कमियां नहीं है। तो इस प्रकार हमें इस दुनिया में भी आवाज देते कि आजकल भारत में तो बहुत अवतार का जन्म होता है, आजकल एक थोड़ा भारत में एक अवतार चल रहा है, बहुत सारे लोग सोच रहे ये कौन है, ये कौन है, जो भी है। तो हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में अवतारों के बारे में बताएंगे, फिर आपको हम पांच प्रश्न बताएंगे। कहीं भी आप किसी अवतार का दर्शन करने जाएंगे तो आप उनसे जिज्ञासा कर सकते हैं, पांच प्रश्न कर सकते हैं, पांच में से एक दो प्रश्न कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं सुध गोस्वामी जो है उन्होंने भगवान के जो अवतार बताए हैं। तो ऐसे भगवान के अवतार छह है, प्रमुख अवतार है, वो है पुरुष अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तावेश अवतार। अभी इनको पूरा डिटेल बताने का समय नहीं है। तो शक्तावेश अवतार में भी दो कैटेगरीज हैं, एक स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, और शक्तावेश का मतलब है कि किसको शक्ति प्रदान करना। तो इसमें दो के साथ है शक्तावेश अवतार, स्वसेवन शक्ति जो है शेषनाग है, फिर भूधारण शक्ति है वो अनंत देव है, फिर सृष्टि रचना शक्ति ब्रह्मा जी। आप देखते हैं भी ब्रह्मा जी के नतुने से भगवान आए, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रकट किया, ऐसे हमारे अंदर गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। ऐसे शिव जी भी उनके भवे से निकले थे, तो ऐसे उसका अर्थ ये नहीं कि शिव जी ब्रह्मा जी के, ऐसे यहां हम लोग समझ लेते हैं शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र है, लेकिन शिव जी जो है एक तत्व है, शिव तत्व कहते हैं, जीव तत्व, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, ऐसे एक शिव जी एक तत्व है। फिर ज्ञान शक्ति यह है चतुष्कुमार, ठीक है, व्यासदेव। फिर भक्ति शक्ति नारद जी, प्रभुपाद जी। आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने 12 साल में 108 मंदिर बनाए, 60 से भी अधिक ग्रंथों को लिखा, 10,000 से भी अधिक लोगों को उन्होंने भक्त बनाया, फिर बहुत सारे गौशाला, फार्म कम्युनिटी, गुरुकुल बनाए। तो एक व्यक्ति जिसको शक्ति दी है, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, कृष्ण शक्ति बिना तार ना ही प्रवर्तन। जैसे जब तक बिजली नहीं है ये लाइट नहीं चलेंगे, पंखा भी नहीं चलेगा, उसी प्रकार जब तक भगवान की शक्ति किसी को नहीं मिलती है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। फिर पालन शक्ति है पृथु महाराज। आप देखते कि पृथु महाराज ने इस पृथ्वी को जो है इसमें हल चला के, इस पृथ्वी में जितने भी जीव है 84 लाख, सबके लिए पृथ्वी से उन्होंने मंथन करके उनके योग्य भोजन प्राप्त करके दिया था। फिर दुष्ट दमन शक्ति वो है परशुराम, तो परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का वध करके उनके खून से एक तालाब बनाया था, कुरुक्षेत्र में है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि भगवान के जो पूर्ण प्रमुख अवतार जो है, ऐसे शास्त्रों में एक नैमित्तिक बताया जाता है और एक नित्य अवतार है, लेकिन कृष्ण भगवान वो है अवतार ही है। हम थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो जैसे मैंने बताया कि सूत गोस्वामी से जब भी उन्होंने प्रश्न किया कि आप भगवान के अवतारों के बारे में बताओ, तो अभी सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के चार पुत्र है, वो ऐसे तो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए हैं लेकिन पहले भगवान ने उनको निर्माण किया है। उसके बाद में अभी आज वराह के बारे में बात चल रहा है, तो समस्त यज्ञ के परम भोक्ता ने शुकर का अवतार द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर लाया। तो आप देखते हैं कि हिरण्याक्ष भी इतना लोभी था कि उसने पृथ्वी से पूरा सोना इकट्ठा करके पृथ्वी को नीचे जल में डाल दिया था। तो आप भागवतम का जो है तीसरा स्कंद अध्याय 17-18 पूरी कथा उसमें आती है, आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे वो बताते हैं कि नारद जी है, देवर्षि नारद जो है वो भी भगवान के शक्तावेश अवतार है। फिर उसके बाद में चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण। तो ये नर नारायण कौन है? कृष्ण और अर्जुन है, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने वहां तपस्या किया हिमालय में, तो उस वक्त इंद्र ने भी जो है अप्सराओं को भेजा था। तो आप देखते हैं कि उस वक्त भगवान ने अपने जंगा से बहुत सारे अप्सराओं का प्राकट्य किया, तो उसमें एक थी उसका नाम उर्वशी था, ठीक है। फिर आगे भगवान जो है कपिल देव, वो अपने जो है कपिल देव जो है किस मुनि के पुत्र थे? कर्दमा और देहवती। तो आप देखते हैं कि कपिल देव भगवान ने सांख्य योग बताया है। तो इस दुनिया में 6 प्रकार के ज्ञान है, षड दर्शन कहते हैं, षड दर्शन, उसमें एक है सांख्य योग। तो सांख्य योग में ये बताया गया है कि हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है, जैसे एक कंप्यूटर होता है, एक कुछ भी एक चीज है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स, जैसे कार बनती है तो कार में कितने पुर्जे होते हैं किसी को मालूम है? 4 टायर तो होते हैं मालूम है, उसमें एक इंजन होता है, 4 सीट होते हैं। तो ऐसे बताते हैं 72,000 अलग अलग पुर्जे ज्वाइंट करके कार बनता है। तो हमारे शरीर में भी 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है। ये कोई साइंटिस्ट ने बताया है कि जब ये शरीर मर जाता है तो इसमें से 7 प्रकार के घटक मिलते हैं। कितने प्रकार के? कैल्शियम, आयरन, ऐसे 7 प्रकार के उन्होंने घटक बनाए। और 10 साल पहले उन्होंने रेट लगाया था, इसकी मार्केट रेट है 110 रुपए। कितना है? हाँ, तो हमारे शरीर में से जो कुछ भी निकलता है मार्केट रेट 110 है। तो यहां उन्होंने 24 तत्व का उल्लेख किया है सांख्य योग में। फिर बहुत सारा उन्होंने त्रिगुण के बारे में, फिर भक्ति त्रिगुण में कैसे लोग भक्ति करते हैं उसका उल्लेख, और एक जीवात्मा माँ के गर्भ में भगवान से कैसे प्रार्थना करता है, ये सब जो है ज्ञान कपिल देव ने अपने माँ को दिया है। उसके पश्चात आता है कि भगवान जो है अत्रि और अनुसुईया के गर्भ से जो है उन्होंने जब भी जन्म लिया तो उन्होंने ईश्वर करके संबोधित किया था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो कंफ्यूज हो गया, अरे हमने किसको बुलाया था। तो फिर तीनों के अंश से जो एक भगवान का एक रूप प्रकट हो गया, उनको कहते हैं दत्तात्रेय। इनका ज्यादा महाराष्ट्र में इनको ज्यादा मानते हैं, ये दत्त अवतार, दत्त जयंती भी मनाया जाता है। उसके बाद में भगवान जो है सातवें अवतार में प्रजापति रुचि तथा उसकी पत्नी आकुति के पुत्र के पुत्र यज्ञ के रूप में स्वयंभू मनु, उस समय भगवान जो है उन्होंने शासन संभाला था और देवताओं की मदद की थी। उसके बाद में आठवें अवतार में भगवान जो है ऋषभ देव, तो पांचवें स्कंद में हम देखते हैं कि ऋषभ देव की शिक्षाएं हैं। तो ऋषभ देव भी शक्ता अवतार वेश अवतार है। तो ऋषभ देव के 100 पुत्र थे जिसमें जो है ये ये थे, बड़े थे, भरत महाराज उनके बड़े पुत्र थे। बाद में भीष्म जो है उन्होंने अपना घर त्याग दिया और उन्होंने एक जंगल के अग्नि में अपना शरीर छोड़ दिया। उसके बाद में पृथु महाराज और अर्ची, तो पृथु महाराज कैसे प्रकट हुए थे, किसका मंथन किया था, हाँ ओके ओके, हाँ उस शरीर से पृथु और अर्ची का जन्म हुआ था। फिर पृथु महाराज जो है उनकी कथा भागवतम में 34 स्कंद में आती है। तो उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, चक्षुष मनुअंतर के समय बताया जाता है कि पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जल जो है जगत प्रलय में, दो प्रकार के प्रलय बताए जाते हैं, एक जल प्रलय और एक अग्नि से प्रलय होता है। तो उस समय भगवान जो है मछली के रूप में प्रकट हुए और वयोस्वत मनु को नाव में रखकर जो है उन्होंने उनकी रक्षा की। फिर उसके पश्चात आता है अगला, भगवान जो है 11वें अवतार में कच्छप के रूप में अवतरित हुए, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के अस्तित्व को, आस्ति को तथा नास्ति को द्वारा मथनी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंद्राचल पर्वत के लिए आधार बने। तो ये 8वें स्कंद में बहुत बड़ी लीला है। आप देखते हैं कि समुद्र मंथन से 14 चीज प्रकट हुए थे। तो एक ऐसी एक लीला है जिसके अंतर्गत भगवान के 4 अवतार हुए हैं। तो इसमें भगवान एक तो कश्यप अवतार में आए, उसके बाद में जयंत, भगवान जो है देवताओं का मदद करने के लिए जयंत के रूप में प्रकट हो गए। फिर तीसरा जो है भगवान धन्वंतरी के रूप में आए। चौथा किसी को मालूम है, हाँ मोहिनी के रूप में भगवान का ये रूप था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस लीला के दौरान ये मंद्राचल पर्वत गिर गया था, तो भगवान ने सारे देवी देवता और असुर वो घायल हो गए थे, उनको अपने दृष्टि से उनको फिर से जिंदा करके फिर क्षीर सागर में मंद्राचल को ला के फिर वहां उनको कहा कि आप समुद्र मंथन चालू करो। तो अगला है 12वां अवतार है, वो है धन्वंतरी अवतार। तो इस अवतार में हम देखते हैं कि धन्वंतरी भगवान जो है वो अमृत लेके आए थे। तो उस वक्त जो है देवताओं में और असुरों में एक बड़ा झगड़ा हो गया, पहले तुम। तो ये हम देखते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, कम्युनिस्ट और जो है दूसरे कौन से है, हाँ रिपब्लिक जो है, समाजवादी और कौन से वादी, पूंजीवादी। तो ऐसे बताया था कि ये जब भी झगड़ा हुआ असुरों में, उसमें थोड़े समाजवादी थे, वो कहने लगे सबको मिलना चाहिए, जो ये थे समाजवादी वाले वो कहते नहीं नहीं पूंजीवादी वो कहते थे सबको मिलना चाहिए, समाजवादी कह रहे थे नहीं केवल हम लोग ही पिएंगे। तो उस समय से इस दुनिया में ये दो प्रकार के लोग बने हैं, ये पूंजीवादी और समाजवादी। तो आप देखते हैं कि जो मोहिनी भगवान का जो अवतार हुआ था, तो उससे वो लोग बिल्कुल भाव विभोर हो गए और मोहिनी के हाथ में घड़ा पकड़ा दिया। तो जैसे मोहिनी जो है देवताओं को पिला के अंतर्धान हो गई, तो बाद में शिवजी को पता चला, तो शिवजी ने कहा कि हमारे लिए भी एक बार हमें ये रूप दिखा दो। फिर शिवजी को भी जो है भगवान ने एक अलग से प्राइवेट उनके लिए एक शो किया था। फिर उसके बाद में हम देखते हैं नरसिंह देव का अवतार जो है वो 14वें अवतार में नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ था। तो नरसिंह देव प्रकट हुए थे खास करके हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए और प्रहलाद का संरक्षण करने के लिए। उसके पश्चात 15वां जो अवतार है आप देखते हैं, एक बौने ब्राह्मण के रूप में, वामन के रूप में भगवान अवतरित होकर भगवान ने बलि महाराज ने जो राज देवताओं का राज छीन लिया था, उस राज को वापिस देवताओं से लेने के लिए ये योजना की थी। तो आप देखते हैं कि उस समय शुक्राचार्य जो है उन्होंने बलि महाराज को बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन बलि महाराज ने कहा मैंने वचन दिया है और मैं वचनबद्ध हूं। तो इस प्रकार वो अपना उन्होंने अपना वचन से वो हटे नहीं और भगवान ने अपने तीन पैरों से पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया था। हाँ उसके पश्चात भगवान का जो अवतार आता है वो है 16वां जो अवतार है भृगुपति। तो आप देखते हैं कि जब भी भगवान जो है क्षत्रिय के रूप में अवतरित हुए थे उस समय क्षत्रियों ने जो है उनके पिताजी कौन थे इनके पिताजी, हाँ माँ माँ मा का नाम क्या था, हाँ करेक्ट। तो जब ही इनके पिताजी का धड़ काट दिया था सहस्त्र अर्जुन उसके पुत्रों ने, तो इन्होंने फिर उनका वध करके फिर अपने पिताजी को फिर से जीवित कर दिया था। उसके पश्चात भगवान का 17वां अवतार है, वो है पराशर मुनि के माध्यम से जो है सत्यवती के गर्भ से व्यास देव के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो भागवतम में उल्लेख आता है कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विसह। तो व्यासदेव को जब पता चला अभी कलयुग का घोर प्रभाव होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया कि श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो पहले नारद मुनि ने आके व्यासदेव जी से कहा कि देखो आप तृप्त नहीं है क्योंकि आपने भगवान के लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, तो आप क्या करो भगवान के लीलाओं का वर्णन करो। उसके पश्चात बताते हैं सुत गोस्वामी बताते हैं भागवतम के पहले अध्याय तीसरे अध्याय पहले स्कंद के, तो उसमें श्लोक में वो बताते हैं कि जो भागवत पुराण है जो कलयुग में जिन लोगों की कलयुग के घोर अंधकार में दृष्टि जो लोग खो गए हैं उनके लिए ये क्या है ये रास्ता दिखाएगा श्रीमद् भागवतम। उसके बाद में 18वां जो अध्याय है वो है राम भगवान का। तो उन्होंने रावण जो 10 सर वाला था रावण का वध किया था। तो आप देखते कि रावण जो है वो काम वासना का प्रतीक है, तो जहां राम वहां नहीं काम, तो राम भगवान ने रावण का वध किया था। तो उसके पश्चात हम देखते हैं कि 19 और 20वां जो अवतार है भगवान का वो है कृष्ण और बलराम जी। तो यहां हम देखते हैं कि भगवान जो है कृष्ण और बलराम जी अवतरित हुए थे खास करके पृथ्वी का बोझ कम करने के लिए। जैसे आजकल लोग जाते हैं डॉक्टर के पास अपना वजन कम करने के लिए, तो आप देखते हैं कि बलराम जी ने तो उसमें भाग नहीं लिया, बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तो खास करके हम देखते हैं कि शास्त्रों में उल्लेख आता है कि इस पृथ्वी में दो प्रकार के व्यक्ति है वो बोझ है। किसी को मालूम है दो प्रकार के व्यक्ति है जो पृथ्वी पर बोझ है? हाँ, जो अधिक खाता है वो नहीं है, जो ओवर वेट है वो नहीं है। इस पृथ्वी पर कौन ज्यादा है बोझ? पृथ्वी देवी के ऊपर बोझ कौन है? हाँ नहीं, जो लोग ज्यादा सैन्य इकट्ठा कर रहे, जो लोग ज्यादा, अभी आप इस दुनिया में पता नहीं कब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तो इस दुनिया में जितने भी आजकल का डिफेंस का जो ये बजट होता है अरबों खरबों डॉलर में होता है, हम लोग अनुमान नहीं कर सकते कि वो कितना पैसा होता है, जो भी है। और दूसरा है जो लोग झूठ बोलते हैं पाप कार्य करते हैं वो एक ही कैटेगरी में आता है, ये पृथ्वी के ऊपर एक बोझ माना जाता है। तो यदा यदा ही धर्मस्य, तो भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। उसके बाद में भगवान जो है वो अभी कितने साल पहले ब्रह्मा जी सॉरी ये बुद्ध भगवान, इनका भागवतम में उल्लेख आता है लगभग 3000 साल पहले बुद्ध भगवान प्रकट हुए थे। उन्होंने क्या किया था कि उस वक्त लोग जो है बलिदान बहुत करते थे, कहते थे कि शास्त्रों में कहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता, इसलिए उन्होंने थोड़ा लोगों को ये बलिदान से दूर करने के लिए उन्होंने जो है एक अपना ही एक ज्ञान दिया था लोगों को नास्तिक बनाने के लिए। उसके बाद में जो है जो आखिरी अवतार शास्त्रों में जो बताया है कल्कि अवतार, अभी कल्कि अवतार आने के लिए और 4,27,000 साल बाकी है, तब तक हम लोग नहीं रहेंगे। तो विष्णु यश के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होने वाले हैं। फिर आगे भागवतम में उल्लेख आता है कि एक बार ब्रह्मा जी सो रहे थे, तो ब्रह्मा जी का दिमाग हैक, आजकल कंप्यूटर में लैंग्वेज में कहते हैं हैकिंग यानी साइबर अटैक, बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो क्या होता है कि आप किसी का भी एक फैक्ट्री दुकान आप जो है वो वायरस से उसको ये कर सकते हैं। तो दो राक्षस थे जो है मैं और कैटब, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का हार्ड डिस्क ही चुरा लिया था। तो ब्रह्मा जी जब एक जग गए तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, तो भगवान समझ गए। तो भगवान ने उन दोनों असुरों का वध किया, फिर ब्रह्मा जी को फिर उनका ज्ञान वापिस दे दिया। उसके पश्चात और एक बहुत लीला अच्छी लीला है, उसमें बताया जाता है कि भगवान जो है हंस के रूप में प्रकट हुए थे। तो बताया जाता है कि जो ब्रह्मा जी के जो चतुश्चार कुमार पुत्र है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को कुछ प्रश्न किया था, तो ब्रह्मा जी उसको उत्तर देने में सक्षम नहीं थे। तो फिर भगवान आए, भगवान ने कहा ठीक है हम इसका उत्तर दे देते। तो ऐसे भी आप देखते हैं कि चतुष्कुमार जो है, ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि अभी आप जो है प्रजापति बन के प्रजा निर्माण करो, उन्होंने मना कर दिया था। तो इस प्रकार ये 24 भगवान के लीला अवतारों का भागवतम में उल्लेख आता है। तो यहाँ जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो बताते हैं कि भगवान के अवतार जो है वो असंख्य है, जैसे एक जलाशय से बहुत सारे अवतार निकलते हैं। तो आगे उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक में बताया, एते च अंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोगों में नासिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो आप देखते हैं कि ऐसे हमारा जो ब्रह्मांड है ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, जैसे दम आलू होता है छोटा सा, तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है। कोई ऐसे ब्रह्मांड है इससे 10 गुना 100 गुना 1000 गुना बड़ा है, तो वहां भी ब्रह्मा जी बड़े बड़े सर वाले हैं, बड़े यानी 8 सर वाले, 16, 32, 64, फिर उसके बाद में 1000 लाख सर वाले भी ब्रह्मा जी हैं। तो हमारे इस ब्रह्मांड में कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, तो उसको कहते हैं अवतारी। भगवान कृष्ण भगवान का अवतार नहीं होता है। तो जब भी कृष्ण भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, तो हमारे जो ब्रह्मा जी है उनका अभी 51 साल का पहला दिन है, ब्रह्मा जी का आयु है 311 खरब 400 अरब, 311 ट्रिलियन 400 बिलियन अंग्रेजी में उनकी आयु है। तो अभी 7वां मन्वंतर चल रहा है, तो 7वां मन्वंतर के अंतर्गत ब्रह्मा जी का ये जो है 1000 युगों के अंदर अभी ये जो है 7वां वैवस्वत मनु, उनका ये 28वां युग चक्र चल रहा है। तो इस प्रकार जो है भगवान के असंख्य अवतार है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान के 3 अवतार ये पूर्ण अवतार बताए जाते हैं, वो है राम, नरसिंह और कृष्ण भगवान के, इनको पूर्ण कहा जाता है। लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान के अंदर 4 अधिक गुण है जो भगवान केवल वृंदावन में ही प्रकट करते हैं, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। वो है लीला माधुर्य, भक्ति माधुर्य, वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य। तो भगवान का जो रूप है उसका वर्णन ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं। किसी कोई बता सकता है क्या श्लोक है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार जो है आज वराह भगवान का जो है अवतार का लीला के बारे में आपको संक्षिप्त में बताया। हरे कृष्णा। श्री वराह भगवान की ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की। किसी को कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो कर सकते हैं। ऐसे समय लगभग हो गया ऑन टाइम। हरे कृष्णा।